नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवली निगम। भारतीय आयात पर अमेरिका के 50% शुल्क लगाने के फैसले को भारत ने अनुचित और अविवेकपूर्ण बताया। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वदन सिंह ने आश्वासन दिया, सरकार देश को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं होने देगी। रूस ने यूक्रेन के 6 ऊर्जा अवसंरचना पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए। चीन ने रूस के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण पर त्रिपक्षीय वार्ता के अमरीका के आह्वान को खारिज किया। ग्रीनलैंड में गुप्त अमरीकी अभियानों की खबरों के बाद डेनमार्क ने अमरीका के शीर्ष राजनयिक को तलब किया। और कजाकिस्तान में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत अब तक 40 स्वर्ण सहित 75 पदकों के साथ शीर्ष पर। अब समाचार विस्तार से। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने भारतीय आयात पर 50% शुल्क लगाने के अमेरिका के फैसले को अनुचित और अविवेकपूर्ण बताया है। नई दिल्ली में आज एक कार्यक्रम में इस मुद्दे पर संवाददाताओं के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री सिंह ने कहा कि अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है और सरकार देश के हितों की रक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार देश को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं होने देगी।
Our economy is very strong. We will definitely not let our country suffer. We are taking appropriate steps that it does not harm our economy. The world is always changing. The political climate, the investment climate, it always changes. And we are well prepared to meet up with any eventuality. Our economy is growing, it's strong, resilient, and we will match and meet these coming challenges.
इस बीच भारतीय आयात पर अमेरिका का 25% का अतिरिक्त शुल्क आज से लागू हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त की समय सीमा से पहले दोनों देशों के बीच समझौता न होने पर भारतीय आयात पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की थी। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और महासचिव डॉ रणजीत मेहता ने भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का उल्लेख किया।
Indian economy is very, very resilient and our macroeconomic indicators are very, very powerful, very strong. Therefore, what we need to do right now is 1.4 billion people, they have to unite and the industry with the 65 million MSMEs and we are a consumption-led economy. I think that we have the demographic dividend in which we have to capitalize and this is the time to leverage on our strengths. This is the time you have to look for alternative opportunities and look for the regional trade agreement.
डॉक्टर मेहता ने कहा कि देश ने विपरीत परिस्थितियों में भी प्रगति की है और अब वैकल्पिक बाजारों की तलाश का समय आ गया है।
India has always shown that spark and that we have seen even during the time of COVID and we are sure that Indian economy and Indian industry entrepreneurs, they will come out of it, they will show the resilience and we have confidence as India is the third largest startup ecosystem in the world. We have a young population and we are very confident that we will definitely find a way within these challenges.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल शाम जापान की यात्रा पर रवाना होंगे। ये प्रधानमंत्री की जापान की 8वीं यात्रा होगी। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ उनकी पहली शिखर बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के बीच साझेदारी के एक नए युग की शुरूआत होने की आशा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा से भारत जापान साझेदारी को एक नया रोडमैप मिलने की उम्मीद है। जापान में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज ने कहा कि दोनों देश उच्च स्तरीय तकनीक और आपूर्ति श्रृंखला को सरल बनाने को प्राथमिकता दे रहे हैं, साथ ही द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों में भी मुख्य रूप से ध्यान दिया जा रहा है।
Focusing a lot on semiconductors in India now, and same is the case with Japan. So we have a complementarity in our relationship in the semiconductor sector.
श्री जॉर्ज ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत जापान संबंधों में व्यापक परिवर्तन आया है। वर्तमान में भारत में 1,500 जापानी कंपनियां काम कर रही हैं और इस संख्या को बढ़ाकर 15,000 करने का लक्ष्य रखा गया है।
हमारा रिलेशनशिप अच्छा रिलेशनशिप है, सभी एरिया में हम प्रोग्रेस देख रहे हैं। सो दिस it as an opportunity for us to take it to a new level of partnership.
जापान में भारत के राजदूत श्री जॉर्ज ने कहा कि दोनों देशों ने अपने संबंधों में हर स्तर पर हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। टोक्यो से ओम अवस्थी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
जापान की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री चीन की यात्रा पर रवाना होंगे। वे चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के निमंत्रण पर 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की 25वीं बैठक में भाग लेने के लिए तियानजिन जाएंगे। जिम्बाब्वे के उपराष्ट्रपति डॉ CGDN चिवेंगा ने कहा है कि अफ्रीका और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंध प्रगाढ़ हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश प्रौद्योगिकी, नवाचार, विविधीकरण और अवसंरचना विकास पर जोर देने वाली साझेदारियों पर केंद्रित हैं। आज नई दिल्ली में CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ चिवेंगा ने कहा कि जिम्बाब्वे व्यापार के लिए खुला है। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण। रूस ने कल रात यूक्रेन के 6 क्षेत्रों में ऊर्जा और गैस परिवहन बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए। रूस की सेना ने पोल्टावा क्षेत्र में गैस परिवहन बुनियादी ढांचे को बड़ा नुकसान पहुंचाया और सुमिक क्षेत्र में प्रमुख सबस्टेशनों को निशाना बनाया। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि खार्किव क्षेत्र में भी पूरी रात हमले किए गए। चीन ने आज कहा कि वो अमरीका रूस के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण वार्ता में शामिल नहीं होगा। चीन ने अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के त्रिपक्षीय वार्ता के आह्वान को खारिज कर दिया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गो ज़ियाकुन ने कहा कि असमान परमाणु क्षमताओं के कारण चीन की भागीदारी की उम्मीद न तो उचित है और न ही यथार्थवादी। ग्रीनलैंड में गुप्त अमरीकी अभियानों की खबरें सामने आने के बाद डेनमार्क के विदेश मंत्री ने कोपेनहेगन में अमरीका के शीर्ष राजनयिकों को तलब किया है। डेनिश प्रसारक DR ने अमरीकी नागरिकों द्वारा ग्रीनलैंड के समाज में घुसपैठ करने और डेनमार्क से अलगाव को बढ़ावा देने के कथित प्रयासों की खबर दी। ओमान इस महीने की 31 तारीख को एक वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत अपना संशोधित गोल्डन वीजा कार्यक्रम शुरू करेगा। वाणिज्य उद्योग और निवेश संवर्धन मंत्रालय द्वारा घोषित यह पहल अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और तेल राजस्व पर निर्भरता कम करने के विजन 2040 के लक्ष्यों के अनुरूप है। अफगानिस्तान में काबुल के निकट अरगंडी इलाके में आज सुबह एक यात्री बस के पलट जाने से 25 लोगों की मृत्यु हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल मतीन कानी के अनुसार कंधार को काबुल से जोड़ने वाले राजमार्ग पर यह दुर्घटना लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई। पाकिस्तान में गरीबी बढ़ गई है और 44.7% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। इस बीच सेना का देश की अर्थव्यवस्था पर दबदबा बना है। बिगड़ते वित्तीय संकट और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों पर निर्भरता के बावजूद रक्षा खर्च में 20% की वृद्धि हुई है। भारतीय निशानेबाज अनीश भानवाला ने कजाकिस्तान में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। अनीश स्वर्ण पदक की दौड़ से सिर्फ एक अंक से चूक गए। पदक तालिका में भारत 40 स्वर्ण, 18 रजत और 17 कांस्य पदक के साथ कुल 75 पदक लेकर शीर्ष पर है। वियतनाम और थाईलैंड में तेज बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन से 8 लोगों की मौत हो गई। वियतनाम में कई उत्तरी और मध्य प्रांतों में बाढ़ से 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं सूडान के उत्तरी शहर अलदमर में भारी बारिश के बाद आई अचानक बाढ़ से 9 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय मीडिया ने बताया कि बाढ़ से 5 इलाके जलमग्न हो गए हैं। अटबारा और खारतूम को जोड़ने वाली मुख्य सड़क के जलमग्न होने से यातायात बाधित हुआ है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने अपने आयात पर अमेरिका द्वारा 50% शुल्क लगाने के फैसले को अनुचित और अविवेकपूर्ण बताया। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आश्वासन दिया, सरकार देश को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं होने देगी। रूस ने यूक्रेन के 6 ऊर्जा अवसंरचना पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए। चीन ने रूस के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण पर त्रिपक्षीय वार्ता के अमरीका के आह्वान को खारिज किया। ग्रीनलैंड में गुप्त अमरीकी अभियानों की खबरों के बाद डेनमार्क ने अमरीका के शीर्ष राजनयिक को तलब किया। और कजाकिस्तान में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत अब तक 40 स्वर्ण सहित 75 पदक के साथ शीर्ष पर। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।